जनवरी 2026 की प्रहरी दुर्ग। इस लेख का अध्ययन 2 से 8 मार्च के दौरान किया जाएगा। विषय, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख बढ़ाते रहिए। 2026 का सालाना वचन, सुखी है वो जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है। मत्ती 5:3। गीत 97। जिंदगी टिकी यह के वचनों पे। क्या सीखेंगे? यहोवा के इंतजामों से हम कैसे अपनी भूख मिटा सकते हैं, नया पहनावा पहन सकते हैं और उसकी पनाह में रह सकते हैं। पैराग्राफ 1। सवाल, हमारी जिंदगी किन चीजों पर टिकी हुई है? यहोवा ने हमें इस तरह बनाया है कि जिंदा रहने के लिए हमें खाने, कपड़े और सिर छिपाने की जगह चाहिए होती है। अगर इनमें से कोई एक चीज थोड़े वक्त के लिए भी हमारे पास ना हो तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सच है कि हमें रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत है, लेकिन खुश रहने के लिए हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भी जरूरत है। मत्ती 5:3 में लिखा है, सुखी है वो जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें और लगातार परमेश्वर से मार्गदर्शन लें। पैराग्राफ 2। सवाल, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख होने का क्या मतलब है? उदाहरण देकर समझाइए। परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख होने का क्या मतलब है? यूनानी भाषा में इस बात के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनसे तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर मन में आती है जो पवित्र शक्ति की भीख मांग रहा हो। जरा एक भिखारी के बारे में सोचिए जो सड़क किनारे पड़ा हुआ है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, आते जाते लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं है। कभी वो तपती गर्मी झेलता है तो कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरता है। वो जानता है कि अगर वो अपने हालात बदलना चाहता है तो उसे किसी की मदद लेनी होगी। उसी तरह जिस व्यक्ति में परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख होती है वो जानता है कि खुश रहने के लिए उसे परमेश्वर से मदद लेनी होगी। ऐसा व्यक्ति उन सब इंतजामों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा जो यहोवा ने हमें मार्गदर्शन देने के लिए किए हैं। पैराग्राफ 3। सवाल, इस लेख में हम क्या जानेंगे? इस लेख में सबसे पहले हम फिनिके की रहने वाली औरत के बारे में जानेंगे जिसने यीशु से मदद की भीख मांगी थी। हम उसकी 3 खूबियों पर गौर करेंगे जो परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए हम में भी होनी चाहिए। इसके बाद हम प्रेषित पतरस, प्रेषित पौलुस और राजा दाविद के उदाहरण पर ध्यान देंगे जिन्होंने मार्गदर्शन पाने के लिए हमेशा परमेश्वर की तरफ देखा। फिनिके की रहने वाली औरत से सीखिए। पैराग्राफ 4। सवाल, फिनिके की रहने वाली औरत यीशु के पास क्यों आई? एक बार फिनिके की रहने वाली एक औरत यीशु के पास आई। उसकी बेटी को एक दुष्ट स्वर्गदूत ने बुरी तरह काबू में कर लिया था। मत्ती 15:21-28। वो औरत घुटनों के बल गिरकर यीशु से मदद की भीख मांगने लगी। उस परदेसी औरत में ऐसी खूबियां थीं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए उसकी 3 खूबियों के बारे में जानें। पैराग्राफ 5। सवाल, उस परदेसी औरत में कौन सी खूबियां थीं और यीशु ने उसके लिए क्या किया? जब उस परदेसी औरत ने यीशु से मदद मांगी तो यीशु ने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे फेंकना सही नहीं है। यीशु की यह शब्द सुनकर शायद कोई बुरा मान जाता। शायद उसे लगता कि एक पालतू जानवर से उसकी तुलना करके यीशु उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन उस औरत ने यीशु की बात का बुरा नहीं माना। इससे साफ पता चलता है कि वो कितनी नम्र थी। ध्यान दीजिए कि यीशु की बात सुनकर वो औरत वहां से चली नहीं गई, बल्कि मदद मांगती रही। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो इसलिए कि उसे जबरदस्त विश्वास था कि यीशु उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। उसका एक गजब का विश्वास यीशु के दिल को छू गया और उसने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि उसने अभी अभी कहा था कि उसे सिर्फ इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है, फिर भी उसने उस परदेसी की बेटी को ठीक कर दिया। पैराग्राफ 5 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि फिनीके में रहने वाली औरत घुटनों के बल गिरकर यीशु से मदद की भीख मांग रही है। यीशु और उसके तीन चेले खाने की मेज पर बैठे हैं और इस औरत की बात सुन रहे हैं। चित्र शीर्षक। फिनीके में रहने वाली औरत नम्र थी, उसने हार नहीं मानी और विश्वास रखा, इसलिए वो यीशु से मदद मांग पाई। पैराग्राफ 6 सवाल, फिनीके की रहने वाली औरत के किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर से लगातार मार्गदर्शन पाने के लिए हम में भी ये तीन खूबियां होनी चाहिए। हमें नम्र होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और अपना विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम नम्र होंगे तो आसानी से हार नहीं मानेंगे और परमेश्वर से मदद मांगते रहेंगे। इतना ही नहीं, हम यीशु पर विश्वास रखेंगे और उन भाइयों पर भी भरोसा रखेंगे जिनके जरिए आज यीशु हमें राह दिखा रहा है। अगर हम परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की इस भूख को मिटाने के लिए उससे विनती करते रहेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। सच तो ये है कि यहोवा और यीशु दोनों को ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। अब आइए देखें कि यहोवा कैसे हमारी भूख मिटाता है, हमें नया पहनावा देता है और पनाह देता है। हम ये भी जानेंगे कि यहोवा के इन इंतजामों से फायदा पाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हम प्रेषित पत्रस, प्रेषित पौलुस और राजा दाविद के उदाहरण पर ध्यान देंगे। पत्रस की तरह अपनी भूख बढ़ाते रहिए। पैराग्राफ 7 सवाल, पत्रस को क्या जिम्मेदारी मिली और उसे किस बात का ध्यान रखना था, समझाइए। प्रेषित पत्रस ने पहचान लिया था कि यीशु ही मसीहा है और यहोवा उसके जरिए लोगों को हमेशा की जिंदगी की बातें सिखा रहा है। यूहन्ना 6:66-68। स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने पत्रस से कहा, मेरी छोटी भेड़ों को खिला, यूहन्ना 21:17। और पत्रस ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। मंडलियों का हौसला बढ़ाने के लिए पत्रस ने दो चिट्ठियां लिखीं जो बाद में बाइबल का हिस्सा बनी। लेकिन पत्रस को इस बात का ध्यान रखना था कि वो परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की अपनी भूख को मिटने ना दे, और उसने ऐसा ही किया। उसने प्रेषित पौलुस की लिखी चिट्ठियों का गहराई से अध्ययन किया। हालांकि उसने इस बात को कबूल किया कि पौलुस की कुछ बातें समझने में मुश्किल है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरा पत्रस 3:15-16। उसे पूरा विश्वास था कि ठोस आहार को हजम करने के लिए, यानी पौलुस की लिखी गहरी बातें समझने के लिए, यहोवा जरूर उसकी मदद करेगा। इब्रानियों 5:14 में लिखा है, मगर ठोस आहार तो बड़ों के लिए है, जो अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करते करते सही गलत में फर्क करने के लिए इसे प्रशिक्षित कर लेते हैं। और इब्रानियों 6:1 में लिखा है, जब हम मसीह के बारे में बुनियादी शिक्षाओं से आगे बढ़ चुके हैं तो आओ हम पूरा जोर लगाकर प्रौढ़ता के लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाए। हम फिर से बुनियाद ना डालें, यानी हम दोबारा वही बातें ना सीखते रहें जिनसे हमने शुरुआत की थी, जैसे बेकार के कामों से फिरकर पश्चाताप करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। पैराग्राफ 8 सवाल, जब पत्रस को यहोवा से एक नया निर्देश मिला तो उसने क्या किया? पत्रस को यहोवा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने यहोवा से मिलने वाले सभी निर्देशों को माना। आइए किस्से पर ध्यान दे। जब वो याफा शहर में था तो उसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उससे कुछ जानवरों को काटकर खाने के लिए कहा गया। ये जानवर मूसा के कानून के हिसाब से अशुद्ध थे। एक यहूदी ऐसे किसी जानवर को खाने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए पत्रस ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, मैंने कभी कोई दूषित और अशुद्ध चीज नहीं खाई है। तब उससे कहा गया, तू अब से उन चीजों को दूषित मत कहना जिन्हें परमेश्वर ने शुद्ध किया है। प्रेषितों 10:9-15। क्या पत्रस इस दर्शन का मतलब समझ गया था? बिल्कुल। ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। इस दर्शन के कुछ ही वक्त बाद तीन आदमी पत्रस से मिलने आते हैं, जिन्हें कुर्नेलियुस नाम के गैर यहूदी ने भेजा है। वो उसे अपने साथ कुर्नेलियुस के घर चलने के लिए कहते हैं। आमतौर पर पत्रस एक गैर यहूदी के घर कभी नहीं जाता, क्योंकि यहूदी गैर यहूदियों को अशुद्ध समझते थे। लेकिन इस दर्शन के बाद पत्रस समझ गया था कि उसे क्या करना है। इसलिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम साफ देख सकते हैं कि पत्रस ने परमेश्वर से मिलने वाले निर्देश को तुरंत माना। उसने कुरनेलियुस और उसके पूरे घराने को गवाही दी। उन्होंने सच्चाई को अपनाया, उन्हें पवित्र शक्ति मिली और उन्होंने बपतिस्मा लिया। सोचिए, ये सब देखकर पत्रस को कितनी खुशी मिली होगी। पैराग्राफ 9। सवाल, अगर हम ठोस आहार के लिए अपनी भूख बढ़ाएं तो हमें क्या फायदे होंगे? हम पत्रस से क्या सीख सकते हैं? हमें बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं के बारे में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वो दूध की तरह हमें पोषण देती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ठोस आहार के लिए भी अपनी भूख बढ़ानी चाहिए, यानी बाइबल की गहरी बातों को समझने के लिए अपने अंदर जबरदस्त इच्छा पैदा करनी चाहिए। अगर हम सच में बाइबल में लिखी गहरी बातों को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वक्त निकालना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। ऐसा करने से कम दो फायदे होंगे। एक, हम यहोवा के बारे में ऐसी बातें सीखेंगे जिनसे हम उससे और प्यार करने लगेंगे और हमारा दिल उसके लिए एहसान से भर जाएगा, और दूसरा, हमारा मन करेगा कि हम दूसरों को भी इस बारे में बताएं कि यहोवा कितना महान परमेश्वर है और वो हमसे कितना प्यार करता है। पत्रस से हम एक और बात सीख सकते हैं। जब बाइबल की शिक्षाओं के बारे में हमारी समझ में कोई फेरबदल होता है तो हमें तुरंत उसे अपनाना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और फिर नई समझ के हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा करने से हम पत्रस की तरह अपनी भूख मिटा पाएंगे और यहोवा के काम आते रहेंगे। पौलुस की तरह नया पहनावा पहन लीजिए। पैराग्राफ 10। सवाल, नया पहनावा पहनने का क्या मतलब है? आइए परमेश्वर से मिले एक और इंतजाम के बारे में देखें, एक नया पहनावा। इस बारे में पौलुस ने कहा कि हम अपनी पुरानी शख्सियत उतार फेंकें जो पुराने कपड़ों की तरह है, और नया पहनावा पहन लें, यानी नई शख्सियत पहन लें। कुलिसियो 3:8-10 में लिखा है, मगर अब तुम इन सब बातों को खुद से पूरी तरह दूर करो, जैसे क्रोध, गुस्सा, बुराई, गाली गलौज और मुंह से अश्लील बातें कहना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पुरानी शख्सियत को उसकी आदतों समेत उतार फेंको और वो नई शख्सियत पहन लो जिसकी सृष्टि परमेश्वर करता है, और उसे सही ज्ञान के जरिए नया बनाते जाओ ताकि ये परमेश्वर की छवि के मुताबिक हो जाए। कभी कभी खुद में बदलाव करना इतना आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, पर सोचिए, अगर हम नया पहनावा पहनेंगे तो यहोवा को कितनी खुशी होगी। प्रेषित पौलुस की ही बात दीजिए। उसने जवानी के दिनों से ही परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसे नहीं पता था कि परमेश्वर की उपासना करने का सही तरीका क्या है। वो मसीह की शिक्षाओं को पूरी तरह नहीं समझा था। इसके अलावा उसने घमंड का लिबास पहना हुआ था, जिस वजह से वो गुस्ताख बन गया था। 1 तीमुथियुस 1:13। पैराग्राफ 11। सवाल, पौलुस को अपनी किस कमजोरी से लड़ना पड़ा, समझाइए। मसीह बनने से पहले पौलुस बहुत गर्म मिजाज का था। प्रेषितों की किताब में बताया है कि पौलुस मसीहों से इतना गुस्सा था कि उसके सिर पर उन्हें धमकाने और मार डालने का जुनून सवार था। प्रेषितों 9:1। लेकिन मसीह बनने के बाद पौलुस ने खुद में बदलाव करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अपना यह पुराना स्वभाव उतार फेंका और नई शख्सियत पहन ली। लेकिन फिर भी एक मौके पर उसके और बरनबास के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई, जो एक जबरदस्त तकरार में बदल गई। प्रेषितों 15:37-39। इसके बाद पौलुस जरूर निराश हुआ होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद के साथ सख्ती बरती, यानी वो अपनी कमजोरियों से लड़ता रहा ताकि यहोवा को खुश कर सके। पैराग्राफ 12। सवाल, पौलुस क्यों अपनी पुरानी शख्सियत उतार पाया? पौलुस अपनी पुरानी शख्सियत उतारकर नई शख्सियत पहन पाया क्योंकि वो नम्र था। खुद को बदलने के लिए उसने खुद पर नहीं बल्कि यहोवा पर भरोसा रखा। पत्रस की तरह वो भी परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहा। 1 पत्रस 4:11। लेकिन इसके बाद भी उससे कई बार गलतियां हुईं और वो निराश भी हुआ। ऐसे में वो इस बारे में सोचता था कि यहोवा ने उसके लिए क्या कुछ किया है। तब उसका दिल एहसान से भर जाता था और खुद में बदलाव करने और यहोवा को खुश करने का उसका इरादा और मजबूत हो जाता था। पैराग्राफ 13। सवाल, हम पौलुस से क्या सीख सकते हैं? हमें यहोवा की सेवा करते हुए चाहे कितने भी साल हो चुके हों, हमें पुरानी शख्सियत को उतार कर नई शख्सियत पहनने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बीच शायद हमसे कुछ गलतियां हो जाए, जैसे शायद हम किसी को कुछ बुरा भला कह दें या गुस्से से भड़क जाएं। ऐसे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहोवा को कभी खुश नहीं कर सकते। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि खुद में सुधार करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, यहोवा हमें जो पहनावा देता है वो सचमुच के कपड़ों की तरह नहीं है, जिनमें हम अपने नाप के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इसे पहनने के लिए हमें खुद में बदलाव करना होगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहोवा हमारे लिए अपने स्तरों को बदलेगा, बल्कि हमें खुद को यहोवा के स्तरों के मुताबिक बदलना होगा। दाविद की तरह यहोवा की पनाह में रहिए। पैराग्राफ 14 और 15। सवाल, यहोवा किन तरीकों से अपने लोगों की हिफाजत करता है? अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी भूख बढ़ाने और नया पहनावा पहनने के अलावा हमें यहोवा की पनाह भी लेनी होगी। लेकिन यहोवा की पनाह में रहने का क्या मतलब है और उसकी पनाह में रहने के लिए हमें क्या करना होगा? दाविद के शब्दों से पता चलता है कि यहोवा की पनाह में रहने का क्या मतलब है। भजन 27:5 में लिखा है, क्योंकि संकट के दिन वो मुझे अपने आश्रय में छिपा लेगा, अपनी गुप्त जगह में, अपने तंबू में छिपा लेगा, वो मुझे ऊंची चट्टान पर चढ़ा देगा। यहोवा अपने लोगों को ऐसे हर खतरे से बचाता है जिससे उनका विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, जैसे वो हमें उन खतरों से बचाता है जो दूसरे हम पर लाते हैं। उसने वादा किया है कि हमारे खिलाफ उठने वाला कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। यह सच है कि शैतान और उसकी दुष्ट दुनिया ताकतवर है, लेकिन जब तक हम यहोवा की पनाह में हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वो हमारी जान भी ले ले, तो भी यहोवा हमें दोबारा जिंदा कर सकता है। यहोवा हमें उन खतरों से लड़ने में भी मदद देता है जो हमारी कमजोरियों या चिंताओं की वजह से हम पर आते हैं। ये भी ऐसे खतरे हैं जिनसे हमारा विश्वास तबाह हो सकता है। हमें सहारा देने के लिए यहोवा ने हमें एक बड़ा परिवार दिया है, ऐसे भाई बहन दिए हैं जो हमारी हिम्मत बंधाते हैं। उसने हमें प्राचीन भी दिए हैं जो चरवाहों की तरह हमारी हिफाजत करते हैं, और सभाओं के जरिए यहोवा हमें बार बार याद दिलाता है कि वो और किन तरीकों से हमारी हिफाजत करता है और उनसे फायदा पाने के लिए हमें क्या करना होगा। पैराग्राफ 15 से जुड़ी तस्वीर में, जो बाहर दी तस्वीर भी है, दिखाया गया है कि एक बहन ने प्रहेदुर्ग अध्ययन में जवाब देने के लिए हाथ उठाया है। कुछ और भाई बहनों ने भी अपना हाथ उठाया है। तस्वीर के बारे में और चित्र शीर्षक, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए एक बहन मंडली के भाई बहनों के साथ सभा का मजा ले रही है। पैराग्राफ 16। सवाल, यहोवा की पनाह में रहने के लिए दाविद ने क्या किया? ध्यान दीजिए कि यहोवा की पनाह में रहने के लिए दाविद ने क्या किया। उसने यहोवा की आज्ञा मानी और कई अच्छे फैसले लिए, जिस वजह से वो कई खतरों से बच पाया और उसकी हिफाजत हुई। लेकिन कुछ मौकों पर दाविद यहोवा की आज्ञा मानने से चूक गया। वो मानो यहोवा की पनाह से दूर चला गया और उसे अपने गलत फैसलों के अंजाम भुगतने पड़े। लेकिन ऐसा भी हुआ जब दूसरों की वजह से दाविद को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। ऐसे में दाविद ने क्या किया? उसने प्रार्थना में यहोवा के आगे अपना दिल खुलकर रख दिया और अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दी, और यहोवा ने भी उसे यकीन दिलाया कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसका ख्याल रखेगा। पैराग्राफ 17। सवाल, दाविद की तरह हम क्या कर सकते हैं? दाविद की तरह कोई भी फैसला लेने से पहले हम यहोवा की मर्जी जानने की कोशिश करते हैं। इससे हम अच्छे फैसले ले पाते हैं और हमारी हिफाजत होती है। लेकिन कभी कभी हम कुछ गलत फैसले लेते हैं जिसकी वजह से हम पर मुश्किलें आती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि यहोवा ने हमारी हिफाजत नहीं की। हम असल में अपने गलत फैसलों के अंजाम भुगतते हैं, और जब दूसरों की वजह से हम तकलीफें झेलते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? हम दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं, उसे अपनी चिंताएं बता सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं कि वो हमारे दिल की और मन की हिफाजत करेगा। परमेश्वर से मार्गदर्शन लेते रहिए। पैराग्राफ 18। सवाल, हम किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन हमें क्या करना होगा? 2026 का सालाना वचन है, सुखी है वो जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है। आज यहोवा से मार्गदर्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। वो क्यों? क्योंकि आज हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो मानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए अपने ही तरीके से परमेश्वर की उपासना करते हैं या इंसानों की सलाह पर निर्भर रहते हैं। पर देखा जाए तो इनमें से कोई भी सच में खुश नहीं है। लोगों की ऐसी सोच का हम पर असर ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी भूख मिटाने के लिए हमें यहोवा की ओर ताकना होगा, पुरानी शख्सियत उतारकर नया पहनावा पहनना होगा और हिफाजत पाने के लिए हमें यहोवा की पनाह में रहना होगा। पैराग्राफ 18 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि पिछली तस्वीर में दिखाई गई बहन परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की कोशिश कर रही है। पहली तस्वीर में वो पहेदुर का एक अध्ययन लेख पढ़ रही है। दूसरी तस्वीर में वो एक पति पत्नी के घर खाना लेकर गई है। पति एक कुर्सी पर बैठा है और उसके सिर पर पट्टियां बंधी हैं और उससे ग्लूकोज चढ़ रहा है। और तीसरी तस्वीर में दो भाई रखवाली भेंट करने उसके पास आए हैं और वो बहुत खुश नजर आ रही है। पैराग्राफ 18 से जुड़ी तस्वीर के बारे में, पिछली तस्वीर में दिखाई गई बहन अपनी भूख बढ़ाने के लिए प्रहेदुर्ग का अध्ययन कर रही है, नया पहनावा पहनकर दूसरों की मदद कर रही है और यहोवा से पनाह लेने के लिए प्राचीनों से मदद ले रही है। चित्र शीर्षक, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए हमें अपनी भूख बढ़ाते रहनी होगी, नया पहनावा पहनना होगा और यहोवा की पनाह में रहना होगा। यहोवा के इंतजामों की मदद से हम कैसे अपनी भूख मिटा सकते हैं, नया पहनावा पहन सकते हैं, उसकी पनाह में रह सकते हैं? गीत 162, या जैसी सोच बढ़ाते रहूं। लेख समाप्त।